आंटी, बाबा अक्सर मुरलियों में एक टाइटल हमेशा देते हैं, वह है स्वदर्शन चक्रधारी। इस टाइटल को सार्थक करने वाली, सदैव हाजी का पार्ट पक्का करने वाली, मामा बाबा की साकार पालना से सजाई मूर्ति, मधुर भाषिणी, बाबा की नूरे रतन, आदरणीय दीदी चक्रधारी जी हम सबके समक्ष विराजमान है। हम सभी उनका सहृदय स्वागत करते हैं, स्वागत करते हैं, स्वागत करते हैं। दीदी जी बाल्यावस्था से ही शिव बाबा को अपने अंग संग रखा और जीवन में अलौकिक ज्ञान, गंगा स्नान के साथ साथ दिल्ली के आईपी कॉलेज से राजनीतिक शास्त्र में स्नातक किया। 18 साल की उम्र में सन 1960 में आपने अपना हाथ प्राणप्रिय शिव बाबा को सौंप कर वृहद सेवा हेतु स्वयं को प्रस्तुत किया। विश्व के प्रथम सेवा केंद्र कमला नगर में आपने आदरणीय गुलजार दादी जी एवं जानकी दादी जी से सेवाओं प्रति प्रेरणा ली। वरिष्ठ भ्राता जी जगदीश भाई जी के साथ बाबा के डायरेक्शन अनुरूप सेवा की शिक्षा ली। हमेशा बाबा व भ्राता जी के वाक्यांशों प्रति अगाध श्रद्धा भाव रखकर की गई सेवाओं के फल स्वरूप आप वर्तमान में रशिया एवं बाल्टिक देशों की सेवा की डायरेक्टर जनरल हैं। वर्तमान में आप महिला प्रभाग की चेयरपर्सन हैं। ईश्वरीय सेवाओं एवं आने वाली दैवी सृष्टि को समीप लाने हेतु अपने नाम अनुरूप पूरे विश्व में समय प्रति समय भ्रमण करती रहती हैं तथा ईश्वरीय ज्ञान को सरल शब्दों में प्रस्तुत कर अद्भुत ईश्वरीय पालना का हम सभी को अनुभव कराती हैं। ऐसी आदरणीय दीदी जी से आज हम सुनेंगे ईश्वरीय अनुभूति की सहज विधि। आदरणीय दीदी जी,
ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। अब इस ओम शांति शब्द के उच्चारण के साथ स्वयं से पूछ कर देखिए कि हमने केवल ओम शांति शब्द का उच्चारण किया या इस शब्द के स्वरूप में स्थिर भी हुए, क्योंकि बाबा हम बच्चों को सदा यही कहते हैं कि ज्ञानी बच्चों का एक शब्द भी निरर्थक नहीं होना चाहिए, अर्थ सहित होना चाहिए और उस अर्थ स्वरूप में स्थिर हो, उस शब्द की वास्तविकता का अनुभव होना चाहिए। इसलिए कभी कोई बात कहते हैं एक दो तीन, मानो थर्ड टाइम उस बात को अब लागू कर लेना है। इसलिए मैंने भी 3 बार ये शब्द का उच्चारण किया, क्योंकि प्रथम है कि चलो आपने ओम शांति शब्द बोला, सेकंड फिर रिमाइंडर मिला कि ये शब्द नहीं लेकिन ये हमारे स्वरूप की स्मृति है, थर्ड फिर रिमाइंडर मिला कि ये स्वरूप की स्मृति नहीं है, ये स्मृति में स्थित होने का आवाहन है। अब हम देखें, हमने इन शब्दों को सुना या सुन करके इस स्वरूप की स्मृति में स्थित हुए। इसलिए बाबा हमेशा कहते हैं कि बच्चे ये महामंत्र है तुम्हारा ओम शांति, अगर इतना भी हर समय याद रहे कि मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ तो मैं ऐसा समझती हूँ कि आत्मा बड़ा सुखद अनुभव अपने जीवन में सदा काल के लिए करती रहेगी। क्योंकि आवाज कभी आती है तो ऐसा लगता है कि जब आवाज की आवश्यकता नहीं होती है तब भी हम आवाज निकालते रहते हैं। तो ये हमारा बोलना, आवाज करना हमारी शक्ति का क्षय होना है, क्योंकि शांति बहुत बड़ी शक्ति है जो आत्मा को सुखद अनुभव कराती है। परंतु कभी कभी बिना किसी अर्थ के और बिना किसी बात के अगर हम बोलते हैं या वाचा में आते हैं तो हमारी शक्ति का बड़ा व्यय हो जाता है। केवल बोलना ही नहीं, अगर बिना किसी बात के कंसर्न के हम कोई बात किसी की सुनने की कोशिश करते हैं जिस बात से हमारा कोई मतलब नहीं है, या कहीं इधर उधर देखते हैं जिसका कोई तात्पर्य नहीं है, तो बड़ा स्पष्ट होता है कि ये हमारी शक्तियों का वेस्टेज हो जाता है। और कई बार जब मधुबन जैसे महान स्थल से वापिस जाते हैं तो वापिस जाने पर भी कईयों को कुछ नवीनता के अनुभव नहीं होते, तो वे उन नवीनताओं का जीवन अपना नहीं पाते। ऐसा समझते गए तो जरूर थे लेकिन हमने कुछ ऐसा नएपन का अनुभव नहीं किया। ऐसा नहीं हो सकता है कि कोई बाबा के घर में आए और उसको किसी नएपन का अनुभव ना हो। अनुभव अवश्य होता है लेकिन हम अपनी शक्तियां जो बिना मतलब बोलते हैं, बिना मतलब सुनते हैं और बिना मतलब देखते हैं, वो शक्तियां हमारी वेस्ट होती रहती हैं। वेस्ट होने के कारण जहां आत्मा खाली होती है वह सुनकर थोड़ा भर लेती है, लेकिन जो उसके जीवन में प्रोग्रेस अनुभव होनी चाहिए वे प्रोग्रेस का आभास नहीं होता। क्योंकि गवाना और कुछ पाना ये दोनों थोड़ा थोड़ा साथ साथ चलते रहते हैं। इसलिए देखने में ये आता है कि अगर अपने जीवन में कुछ नए अनुभव करना चाहते हैं तो बड़ा ख्याल रखें, हमारी वचन, हमारा देखना, हमारा बोलना, हमारा कोई व्यस्त की बातों को सुनना, इनमें शक्ति का व्यय नहीं होना चाहिए। हम जब साकार में बाबा के पास आते थे तो बाबा हम बच्चों को ये बातें सिखाते थे, बच्चे ज्ञान सुना, अब ज्ञान सुनने के पश्चात ज्ञान का मंथन करो। एक बार की बात है कि कुछ कन्याएं हम आई हुई थी, काफी वर्षों पूर्व की बात है, तो बाबा के जब महावाक्य पूरे हुए और लौकिक परिवार में रहते कई बार जल्दी उठने की आदत नहीं होती है, जल्दी उठे, क्लास की, और जब क्लास पूरी हो गई तो हम जाकर अपने अपने स्थान पर सब लेट गई। तो अचानक बाबा हमारे उसी स्थल पर आए जहां हम सब लेटी हुई थी, तो बाबा के आते ही हम सब उठकर बैठ गए। उस समय बाबा के ये महावाक्य थे कि बच्चे ज्ञान सुनने के पश्चात लेटना नहीं चाहिए, ज्ञान का मनन चिंतन करने के लिए थोड़ा सा टहलने की भी आवश्यकता होती है, और अगर टहलना नहीं है तो जो बाबा ने सुनाया उसका चिंतन करो। क्योंकि आप सबको मालूम है कि कई बार हम बाबा के महावाक्य बहुत बातें सुनते हैं, उस समय बहुत अच्छी लगती हैं और याद भी रहती हैं, लेकिन जब हम फिर व्यवहार या व्यापार या संसार में जाते हैं तो वो बातें जो सुनी हुई होती हैं वो मानस पटल पर इतनी परिपक्व रूपेण याद नहीं रहती हैं, विस्मृति हो जाती है। तो बाबा का सदा ये कहना होता था कि ताजा ताजा माल सुना है और सुनकर उन पर मंथन होना चाहिए, और जो बच्चे ऐसे समय मंथन करते हैं बाबा उनको बहुत सहयोग देता है। जिस पर हम देखते थे हमारी मामा बाबा की मुरली के पश्चात शांत में एकांत में पेड़ के नीचे टहलते थे, और टहलते हुए बाबा ने आज क्या महावाक्य, कौन से अनमोल रत्न हम बच्चों को दिए, उस पर विचार करते थे। और इतना सुंदर विचार जो दूसरे दिन बाबा की मुरली से पूर्व मामा एक ही पॉइंट बाबा की लेकर इतना सुंदर रूपेण स्पर्श करती थी, कैसा लगता था कि सुना तो हम सबने भी है और सुना मामा ने भी है, लेकिन मामा ने बाबा के महावाक्य सुने नहीं लेकिन उनकी वैल्यू को समझा है, उसके तथ्य को जाना है, उसे जीवन में लाने की क्या आवश्यकता है और जीवन में आने से कितने लाभ हैं और ना जीवन में आने से क्या नुकसान है, ये मामा ने इन चीजों को विचार सागर मंथन कर जाना है। और बाबा के ये महावाक्य हैं कि अगर कोई ज्ञान का मनन चिंतन नहीं करेगा, जरूर है किसी न किसी व्यर्थ के चिंतन का या व्यर्थ के विचारों का मनन चिंतन चलेगा। तो आप समझ सकते हैं ज्ञान चिंतन से जो मक्खन निकलेगा वो आत्मा को स्वयं को भी शक्तिशाली बनाएगा और दूसरों को भी शक्तिशाली बनाने में सहयोगी बनेगा। और अगर कोई व्यर्थ का चिंतन करता है तो उस व्यर्थ के चिंतन से जो व्यर्थ निकलता है वे आत्मा स्वयं भी कमजोर बनती है और अनेकों को कमजोर बनाने के निमित्त बन जाती है। विचार चलता हर एक का है, ऐसा नहीं कि नहीं चलता है, लेकिन किसी का उल्टी तरफ चलता है, किसी का सीधी तरफ चलता है। कोई कहे मेरा चलता ही नहीं है, अगर जिंदा प्राणी है तो ऐसा नहीं कह सकता कि मेरा चलता ही नहीं है, चलता अवश्य है, लेकिन देखना ये है कि मैंने उस मक्खन निकालने वाली दही को भिलोया है, मक्खन निकाला है, या मैंने पानी डालकर उसे भिलो करके मक्खन की आशा रख बैठी। इसलिए बाबा के ये महावाक्य कभी विस्मृत नहीं हो जाना कि ज्ञान चिंतन करना अति आवश्यक है और चिंतन के पश्चात ही हमें कुछ ना कुछ मिलेगा। ऐसे ही मैं एक बार अपने अनुभव की बातें सुनाती हूँ। ऐसे ही मैं बैठी थी तो मैंने कहा, बाबा रोज कहते हैं कि बच्चे नई सत्युगी सृष्टि में तुमको जाना है, इसलिए जहाँ बाबा को याद करना जरूरी है वहाँ बाप द्वारा प्राप्त होने वाली प्रारब्ध को याद करना भी बहुत जरूरी है। जब तक बच्चों को ज्ञान से प्राप्तियाँ क्या प्राप्त हो सकती हैं या ज्ञान के आधार से किस लक्ष्य को हम सब ने पाना है, जब तक ये बात स्पष्ट बुद्धि में नहीं आएगी तब तक ज्ञान का महत्व तो नहीं आता है। इसलिए बच्चों को बाबा को भी याद करना है, और जो बाबा बच्चों को सत्युगी देव पद की प्राप्ति प्राप्त कराने आया वह भी याद रखनी है। तो मैंने ऐसे ही सोचा कि व्यर्थ कभी आए तो उस व्यर्थ से मुक्ति कैसे पाए। आ जाता है, कभी देख कर आ जाता है, सुन कर आ जाता है, कभी कोई घटना से आता है, कभी पुराने संस्कारों से आ जाता है। लेकिन अगर ये चेक हो जाए कि ये जो विचार आ रहा है ये व्यर्थ विचार है, और व्यर्थ विचार मेरी शक्ति का क्षय कर लेगा, नाश कर देगा, इसलिए व्यर्थ से मुक्त होने के लिए मैंने अपने आप से ऐसा एक प्रयोग करके देखा कि मैं सतयुग की सुंदर सृष्टि के अंदर चली गई। इतनी सुंदर सृष्टि है, जिस सृष्टि में क्या सृष्टि की शोभा कहेंगे, बहुत सृष्टि में जगमगाहट है, चारों तरफ शांति और आनंद का ही वातावरण है। ऐसे पवित्र वातावरण है, जिस पवित्र वातावरण में आत्मा गदगद हो रही है। तो मैंने उसी बात पर विचार चलाया कि मुझे वहां पर इतना प्रकाश से प्रकाश ऐसा आभास क्यों आया। तो उस विचार चलाने पर बड़ी अच्छी बात जो मुझे उस समय बुद्धि में आई, तो मुझे बाबा की बात याद आई कि विचार चलाओ बच्चे तो तुम्हें सत्यता बहुत स्पष्ट सामने आनी शुरू हो जाएगी। तो मुझे एकदम ऐसा स्पष्ट हुआ कि आज के इस वातावरण में इतना पॉल्यूशन है, इतना प्रदूषण फैला हुआ है कि इस कदर मिट्टी के कण, धुएं के कण, रेती के कण, फैक्ट्रीज के इस प्रकार के गैसेस चारों तरफ फैली होती हैं, जिससे हमारे सूर्य की प्रकाश या चंद्रमा का प्रकाश, जैसे कि जो रियल प्रकाश होता है, वो प्रकाश हम तक पहुंच नहीं पाता और हम उस प्रकाश का परिपूर्ण रूपेण अनुभव नहीं कर पाते, क्योंकि उसे चारों तरफ के धूली कण, गैस और इस प्रकार का पॉल्यूटेड वातावरण उस लाइट को, रियली लाइट हमारे पास आने नहीं देता है। लेकिन मुझे सतयुग की दुनिया में इतना सुंदर प्रकाश से प्रकाश की दुनिया का क्यों अनुभव हुआ, तो फौरन विचार चलता है कि सतयुग की सृष्टि वो सृष्टि है जहां न केवल मानव सतोगुणी है, लेकिन प्रकृति भी सतो प्रधान है। और सतो प्रधान प्रकृति का मतलब किसी प्रकार की तामसिकता न मानव के विचारों की है और न प्रकृति के किसी तत्व की है। तो जब किसी प्रकार का प्रदूषण न हो, किसी प्रकार का वातावरण में ऐसी विषैली गैसेस का सारा प्रभाव न हो, कोई ऐसे तंत्र जो एक मैले से तंत्र जैसे धुएं से या गैसेस से या प्रदूषण से उत्पन्न होते हैं, वो सब चीजें ना हो, तो हमारा चंद्र और सूर्य कितनी सुंदर चमक दिखाएगा। आज ही हम देखकर अपना अनुभव करते हैं कई बार कि जब कभी वर्षा बड़ी तेज आती है, और तेज वर्षा आने पर कई गैसेस जो हमारे वातावरण में होती हैं, कई धूली कण जो वातावरण में छाए होते हैं, वो जब थोड़े समय के लिए एक थोड़ी सी स्वच्छता आती है, तो आप उस समय का चंद्रमा की चांदनी देखिए या सूर्य का प्रकाश देखिए या तारों की चमक देखिए, वो बड़ी निराली सी होती है, अलग प्रकार की होती है। केवल चंद्रमा ही नहीं चमकता, लेकिन उसके आसपास लाइट से घिरा हुआ चंद्रमा देखने में आता है। तो आप ये विचार कीजिए, जिस वातावरण में कभी भी पॉल्यूशन ना हो, तो वहां की लाइट कितनी तेज होगी। क्या जरूरत पड़ी है वहां बिजलियां जलाने की या ट्यूब्स लगाने की। घर में हीरे जड़ित हैं, इमारत अंदर भी हीरे जड़ित है, बाहर भी हीरे जड़ित हैं। और बाबा कहते हीरे भी ऐसे जैसे ईंटें होती हैं, इस प्रकार सोने की ईंटें हैं, जड़ित हीरे हैं, और बड़ा तेज प्रकाश है, और उस तेज प्रकाश के आने पर हीरो की चमक क्या होगी और घर के वातावरण में रोशनी कितनी होगी। तो वहाँ कोई आर्टिफिशियल लाइट लगाकर रोशनी करने की जरूरत नहीं, दिन में सूर्य का प्रकाश है तो रात को चंद्रमा और तारों का प्रकाश, तो कैसे नेचुरल जीवन होगा, कितना सुंदर जीवन होगा। तो जब ऐसा दृश्य देखा तो ऐसा लगा थोड़ा और देखूं, मेरी सच्चों की दुनिया कैसी दुनिया होगी। फिर मैंने सेकंड दृश्य देखती हूँ कि क्या हमारे उस महलों मकान के अंदर कोई चित्र आदि लगे हुए होंगे, जैसे आज कोई भी घर किसी चित्र से खाली नहीं होगा। चलो ज्ञानी बच्चों ने शिव बाबा का चित्र लगाया या श्री लक्ष्मी नारायण का लगाया, या ज्ञानी लोगों ने कोई सुंदर सीनरी या कोई ऐतिहासिक स्थल या किसी देश का कोई विशेष स्थान जिसका चित्र अपने घर लगा के घर की शोभा बना ली। लेकिन हमारा संसार ही ऐसा है, हमारे आसपास का वातावरण ही ऐसा है कि चारों तरफ मुझे सुंदर सुंदर दृश्य दिखाई दे रहे हैं, तो उसके फोटो खींच के लगाने की क्या जरूरत पड़ी है। ये तो किसी अन्य स्थल में जहाँ बहुत सुंदर दृश्य है तो हम उस दृश्य की फोटो लाकर अपने घर लगा लेते हैं, या कोई बड़ा सौंदर्यपूर्ण या बड़ा प्रसिद्ध कोई ऐतिहासिक स्थल है उसके फोटो आके लगा ली। लेकिन हमारे चारों तरफ पशु पक्षी देखो वो सुंदर हैं, प्रकृति का सौंदर्य देखो वो सुंदर है, भवनों का आकर्षण देखो वो आकर्षित है, मानव का स्वरूप देखो वो सुशोभित है, तो वहाँ किसी की फोटो लगाने की क्या जरूरत होगी। चारों तरफ सुंदर नेचुरल प्राणी पक्षी और प्रकृति ऐसी है कि वहाँ कोई आर्टिफिशियल फोटो लगाकर घर की शोभा को बनाने की जरूरत नहीं होगी। इसी प्रकार ऐसे ही मैं 3 दिन हुए बैठी, मैंने कहा थोड़ा देखूं स्वर्ग और कैसा होगा। तो उस बात पर विचार करते हुए ऐसा आया कि अगर राजा के बेटे की शादी होती है तो जरूर दूसरे राजा की बेटी से शादी होगी, और छोटा सा तो वो संसार है, हर राजा का दूसरे से संबंध है। तो मान लीजिए मेरे संबंधी अलग हैं और तेरे संबंधी अलग हैं, वहाँ ऐसा तो संसार है ही नहीं, वहाँ तो छोटा सा संसार, सभी का आपस में संबंध और सभी का आपस में स्नेह। आज तो एक लड़की का घर अलग होता है, लड़के का घर अलग होता है, चलो लड़की के घर में लड़के के घर और संबंधी उनके आ जाते हैं, और फिर लड़की के घर वाले या लड़के के लड़की दूसरे घर में चली जाती है और उनके संबंधी यहाँ से विदाई देते हैं। वहाँ तो सबके संबंधी एक ही तो होंगे, लड़के के संबंधी अलग हैं, लड़की के संबंधी अलग हैं, उनके मित्र दोस्त दूसरे, उनके मित्र दोस्त दूसरे, एक ही तो होंगे, वहाँ अलग तो है नहीं, संसार ही एक है। तो जरूर है कि एक दिन सारे के सारे संबंधी मिलकर लड़की के घर में आते हैं और वहाँ आकर शादनामा मनाते हैं, और एक दिन सभी जब लड़की दूसरे घर में जाती है तो सभी वही लोग वहाँ चलते होते हैं और वहाँ शादनामा मनाते हैं, जिसके रिवाज आज तक चल रही है कि शादी करके लड़के वाला जब लड़की ले जाता है तो कहते हैं आज हमारे यहाँ रिसेप्शन है। तो वहाँ तो एक प्रबंध ही ऐसा, सुंदर दुनिया ही ऐसी है कि यहाँ के लोग वहाँ हैं, वहाँ के यहाँ हैं, भिन्न नहीं है, लेकिन एक प्रोग्राम का सौंदर्य बनाए रखने के लिए आज सब इधर आ गए, कल सब उधर चले गए। कितना सुंदर वो संसार होगा, कितना आपस का प्यार और प्रेम होगा, कितनी एक दो के साथ नजदीकी होगी, सचमुच जहाँ किसी चीज की कमी ना हो, कमजोरी ना हो, ऐसा सुंदर वो संसार, जिस संसार में हम बच्चों को हमारा बाबा ले जाने के लिए आया है। उसके लिए बाबा हम बच्चों को कहते हैं कि बच्चे ये देवता बनने की पढ़ाई मैं पढ़ाने आया हूँ। देवता बनने की पढ़ाई देवता नहीं पढ़ा सकते हैं, देवता बनने की पढ़ाई देवों के देव पढ़ाते हैं और देवों के देव इसी समय ये पढ़ाई पढ़ाते हैं। अब वो पढ़ाई जो है हमारी, उस पढ़ाई को हम मुरली कहते हैं, क्योंकि इस मुरली में हमें ये स्पष्ट होता है कि हमने अपने संस्कारों को पवित्र कैसे बनाना है। हमको अपने बने हुए पूर्व के कर्मों के संस्कारों को परिवर्तित कैसे करना है, हमें नंबर वन में जाने के लिए क्या करना है और नंबर वार किस कारण से हम हो जाते हैं। हमारा जीवन गुणों से संपन्न होकर कितना सुखदायी होगा और अब गुणों ने हमारे जीवन को कितना दुखदायी बना दिया। जब हमको बाबा के ज्ञान मुरली से सब कुछ समझ में आना शुरू हो जाता है तो प्यारे बाबा की मुरली के बिना हम रह नहीं पाएंगे, क्योंकि मुरली ही तो है, ये वो मुरली ही तो है जो मुझे जीए दान देने वाली है और नया जीवन देने वाली है। इसलिए आज तो थोड़ा कम है, लेकिन शुरू शुरू में जब बाबा के सेवा स्थल खुलने शुरू हुए तो लोगों में बहुत सी भ्रांतियां आनी शुरू हो गई और भ्रांतियों का मूल कारण आप समझ सकते हैं कि जब पवित्रता की मान्यता में दोनों के विचार एक नहीं होते तो भिन्नताएं आती हैं, जब खान पान के विचारों में एकता नहीं होती तो भिन्नताएं आती हैं। लेकिन आज धीरे धीरे समय का फेर है, समय बहुत परिवर्तित हो गया। उस समय यही कहा जाता था कि मुरली तो जादू है, बस कईयों ने ये कहना शुरू कर दिया भाई आपकी पत्नी इस ज्ञान में जाती है उनके यहाँ एक मुरली बजती है, ख्याल रखना वो मुरली ना सुनेगी तो बच जाएगी, अगर मुरली सुनी तो फिर बचना बड़ा मुश्किल है, तुम्हारी पत्नी तुम्हारे हाथ से चली जाएगी। अब पति लोगों को पता चल गया या कई पत्नियों को पतियों का पता चल गया कि ये एक मुरली है जो कुछ तीन चार पेज की होती है और ये मुरली पढ़ के ही इनकी जीवन को कुछ होना शुरू हो जाता है, तो उन्होंने मुरली को फाड़ना शुरू कर दिया और पढ़ने वालों ने मुरली को चाहे कोयले का डिब्बा था या आटे का डिब्बा था उसके छिपा छिपा के रखना शुरू कर दिया और ढूंढने वाले आटे के डिब्बे से भी ढूंढ निकालते और कोयलों के डिब्बे से भी ढूंढ निकालते। ये है इनकी मुरली जिससे इनका जीवन ऐसा हो रहा है। अब वास्तव में उस मुरली में जादू क्या है वो तो मुरली पढ़ने वाले जाने या मुरली के दीवाने प्यारे बाबा के बच्चे जाने। अब वो काठ की मुरली तो थी नहीं, वास्तव में वो मुरली तो बाबा के ज्ञान के वो वर्शन्स हैं जिनसे हमें सत्य और असत्य की पहचान मिली कि हमें सत्य के रास्ते पर कैसे चलना है और असत्य के रास्ते से कैसे हटना है, हमको जीवन में श्रेष्ठ कैसे बनाना है और जीवन को भ्रष्टता के पद से कैसे हटाना है, ये वो मुरली है। और कई बार हमारी माताएं जिनके पति लोग उन्हें नहीं आने देते थे या कुछ हमारे भाई जिनकी पत्नियां नहीं आने देती थी वो कहती थी आप हमारी मुरली को फाड़ देते हो, हम मुरली को छुपाते हैं, कृपया आप पढ़कर देख लीजिए कुछ इसमें जादू की बात हो तो हमें बताओ। वो कहते हम हाथ जोड़ते हैं, हमको ऐसी मुरली नहीं चाहिए जिसे तेरे जैसा जादू हमें भी लग जाए। इसलिए मुरली, बहुत लोग मुरली से बचते थे, मुरली नहीं कभी पढ़ना, ध्यान रखना अगर आपने मुरली पढ़ दी तो गए, क्योंकि मुरली पढ़ के तो ही चले जाते हैं। तो वास्तव में देखा जाए तो मुरली क्या है, जिसका गायन तो बहुत है कि गोपियां मुरली की तान सुन करके अपना घास चरना गैया भी छोड़कर मुरली की तान सुनती थी और गोपियां दीवानी होकर मुरली की तान सुनने चल पड़ती थी। अब पता चलता है कि वो मुरली कोई काठ की मुरली नहीं थी, वे मुरली वास्तव में वो ज्ञान की वो वीणा थी, ज्ञान की वो तार थी, ज्ञान की वो सुगंध थी, ज्ञान की वो संजीवनी बूटी थी जिसने जीवन का निर्माण किया। और आज सचमुच उसी मुरली के दीवाने प्यारे बाबा के बच्चे मुरलीधर के घर आकर पहुंचे। मैं ऐसा कहूंगी कि मुरली का इतना महत्व होना चाहिए कि जो ही बाबा ने कहा उसी क्षण हमने अपने जीवन में उसे धारण करना प्रारंभ कर लिया। आप बाबा की शक्ति का अपने जीवन में अनुभव करेंगे कि वो शक्ति जिस शक्ति के द्वारा ज्ञान के इस पॉइंट को धारण करना मेरे लिए मुश्किल था, लेकिन मैंने बाबा की बात सुनते ही ये मन में संकल्प लाया कि इस बाबा की आज्ञा को मुझे जीवन में धारण जरूर करना है। और आप जीवन में धारण करने शुरू कर दिया। आप अपने जीवन से धीरे धीरे अनुभव करेंगे कि आपको इतनी शक्ति की प्राप्ति होगी और ज्ञान की इतनी स्पष्टता होती चली जाएगी कि आप उसे सहज जीवन में धारण कर सही अनुभव प्राप्त कर सको। बाबा कई बार हमको कह रहे हैं, कई बच्चे कहते योग तो लगाते हैं, लेकिन जो योग का अनुभव होना चाहिए ऐसा अनुभव हमें होता नहीं है। या कोई कहते हैं हमेशा नहीं होता, कभी कभी होता है। और कोई कितने भी पुराने हो जाए तब भी कहते रहेंगे जरा योग के विषय की कुछ गहन बातें सुनाओ जो हम योग का सहज अनुभव कर सके। अब बाबा हम बच्चों को योग की कितनी सहज विधि बताते हैं। बाबा खास कहते हैं कई बच्चे मेरे मेहनत तो बहुत कर रहे हैं मुझे याद करने का, लेकिन मेरे याद का ना तो वे अनुभव ही कर पाते हैं ना उन्हें वो शक्ति की प्राप्ति होती। और उसका कारण क्या है, जिस पर बाबा ने जो स्पष्ट किया, मान लीजिए किश्ती, आप किश्ती में बैठे हो और किश्ती चलाने के लिए आपने चप्पू हाथ में पकड़ लिया और आप चप्पू चलाना शुरू कर दिया। अब चप्पू चलाने पर क्या आपकी किश्ती चलकर इस पार से उस पार या मध्य तक पहुंच जाएगी? जब तक आपने किश्ती का जो लंगर है उसे नहीं खोला तब तक आपकी किश्ती चप्पू चलाने से हिलेगी जरूर, लेकिन इस पार से उस पार नहीं जा सकती। अगर इस पार से उस पार ले जाना है तो प्रथम हमारा कर्तव्य बनता है कि हम उसका लंगर इधर से खोले और फिर चप्पू चलाते हुए इस नैया को ले चले। अब वो लंगर खोलने के लिए बाबा का आदेश है कि बच्चे देह की दुनिया और देह के संबंध अथवा देह के पदार्थ इन सब में तेरे बुद्धि का लंगर लगा हुआ है। अगर तुमने इस नैया को इधर से पार दूसरी तरफ ले चलना है, अर्थात इस नित्य लोक से अमर लोक की तरफ ले चलना है, तो आपको सबसे पहले देह संबंध, देह दुनिया, देह के पदार्थ इन सबसे बुद्धि योग हटाना होगा।
हटाने का मतलब ये नहीं कि घर छोड़ना होगा या देह को तज देना होगा या खाने पीना छोड़ देना होगा, नहीं। कितनी सुंदर बात बाबा ने बड़े सरल शब्दों में कही है कि बच्चे, जब तक तू स्वयं को देह समझेगा तब तक देह संबंध दुनिया पदार्थ और आकर्षण तुझे छोड़ेंगे नहीं। तू देह में रहता एक सेकंड के लिए विचार कर ले कि मैं आत्मा हूँ, नाशवान चोला नहीं हूँ। जो ही तुमने ये सोच लिया कि मैं चैतन्य शक्ति, चमकता हुआ एक दिव्य सितारा, चेतन ने आत्मा हूँ, तो आपका जो लंगर है वो आपका खुल गया। अब जब लंगर खुल जाता है तो अब आप चप्पू चलाना शुरू करो। क्या चप्पू चलाना शुरू करो? सर्वप्रथम अपने उज्जवल दिव्य पावन स्वरूप की स्मृति कि मैं कितनी शुद्ध आत्मा हूँ, कितनी शांत आत्मा हूँ, कितनी पवित्र आत्मा हूँ और कितनी प्रेम में शक्ति संपन्न आत्मा हूँ। स्वयं के स्वरूप को देखो। कैसे देखो? समझ के शीशे में अपने को आपे ही देखो, क्योंकि देह समझने के कारण मैं छोटा, मैं बड़ा, मैं गोरा, मैं काला, या मैं अमीर, मैं गरीब, मैं पढ़ा अनपढ़ा, ये सब कॉन्शियस हमारे मन और बुद्धि को फ्री नहीं होने देते। इसलिए बाबा कहते हैं मन और बुद्धि को फ्री करने के लिए सबसे पहले अपने स्वरूप में आओ और फिर स्वरूप को निहारो। तेरा निज का स्वरूप कितना शांत, कितना शुद्ध, कितना पवित्र और कितना निर्मल है। तू शक्ति संपन्न आत्मा है क्योंकि तू सर्वशक्तिवान का पुत्र है। शेर का पुत्र शेर होगा, शेर का पुत्र गीदड़ नहीं होगा। तू मास्टर सर्वशक्तिवान है, मास्टर आनंद का सागर है, मास्टर प्रेम और सुख का स्वरूप है। तो अपने स्वरूप को बार बार स्मृति में ला और देख जरा अपने स्वरूप को। देख ही नहीं, स्वयं को, स्वयं उस सत्य स्वरूप का अनुभव करने की कोशिश कर। क्योंकि बहुत समय से देह समझने के कारण वो अनुभव हमारे बहुत पुराने और नेचुरल बन चुके, जबकि वो हम है नहीं, लेकिन हमने वो टाइटल्स, वो कॉन्शियसनेस, वो देह और देह के संबंध और देह दुनिया की सब बातों को अपना समझने के कारण बुद्धि को उन्हीं में इंगेज किया हुआ है। अब बाबा ने हम बच्चों को हमारे स्वरूप की पहचान दे दी। अब मुझे केवल अपने स्वरूप की पहचान नहीं करनी, लेकिन अपने स्वरूप की पहचान के बाद मुझे इस देह की दुनिया से, जब मैंने लंगर तोड़ा ही है, तो मुझे चलना है इस देहिक लोक से उस परलोक की तरफ। मेरा ये किनारा छूटेगा वो किनारा जिस पर मुझे पहुंचना है। अब कैसे पहुंचे? तो उस बात पर आप थोड़ा सा विचार कीजिए। जब हमारे कोई अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष में जाते हैं, स्पेसशिप में जाते हैं या चांद पर जाते हैं, तो उसके लिए उन्हें रॉकेट का आधार लेना पड़ता है। रॉकेट में किस प्रकार, वो एक बक्सा सा है जिसको हमने पूरा देखा जहां से रॉकेट जाते हैं, और कैसे वो उसके अंदर बैठ जाता है। और बैठता भी ऐसा रूप उसका दिखाया है, कहते जैसे गर्भ में एक बच्चा बैठा होता है, पड़ा हुआ इस प्रकार वो है। लेकिन कैसे वो रॉकेट उनको वहां तक स्पेसशिप तक ले गया, और वो जो बॉक्स है जिसमें वो बैठा है वो वहां से छोड़ देता है, और वो प्राणी जो अंतरिक्ष यात्री है वो डिब्बे के अंदर वहां चला जाता है, और वहां जाकर के फिर वो उस डिब्बे से भी अलग हटके उस अंतरिक्ष का या चांद का वो अनुभव करता है। तो हमको ऐसा लगता है कि हमें बाबा ने विशेष कहा कि बच्चे तेरा रॉकेट तेरी अकारी प्रकाश की काया है। तो जिस समय अपने को आत्मा समझता है तो आत्मा समझते ही ये हार्ड मास का पिंजर ये अपनी बुद्धि से हटा ले, एकदम ऐसा सामने ला एक प्रकाश ही प्रकाश का आकार है, और इस प्रकाश के आकार में मैं ज्योति स्वरूप आत्मा जो इस साकार लोक से परे मूल वतन की तरफ जा रही हूँ, प्रकाश की आकार कोई भी चीज तेरे इस आकार को रोकने वाली नहीं है। क्योंकि कहा भी गया है कि फरिश्ते सबको देख सकते हैं, फरिश्तों को ना कोई देख सकता है ना उन्हें कोई रोक सकता है। इस प्रकार जैसे एक लाइट के आकार में मैं आत्मा मन और बुद्धि की उड़ान इस साकार वतन से मूल वतन की तरफ ले चली, और वो वतन जिसकी मुझे पहचान है कि वो सूक्ष्म वतन से भी परे जो केवल प्रकाश ही प्रकाश का वतन है, जहाँ पांचों तत्वों का कुछ स्पर्श मात्र भी नहीं है, अमीन तत्वों के लोक से परे वो छठा ज्योतिमय तत्व, जिस ज्योतिमय तत्व में ज्योति बिंदु प्यारे बाबा जो मुझ आत्मा के निरंतर स्तोत्र हैं, सर्व शक्तियां देने वाले दाता, मैं डायरेक्ट उनके पास जा रही हूँ। और जो ही आत्मा इस लाइट ही लाइट के आकार में मन और बुद्धि के आधार से उड़ान भरती है, और जो ही सामने मूल वतन देखती है तो उसको लाइट का आकार जैसे छूट गया, जैसे वो रॉकेट छूट जाता है नीचे आ जाता है, केवल प्राणी वहां रह जाता है। ठीक इसी प्रकार ये लाइट का आकार मेरा छूट गया, अब मैं केवल चमकता हुआ एक हीरा एक सितारा अपने मूल वतन में अपने प्यारे बाबा के सन्मुख विराजमान। भाई सभी नहीं ताली बजाओ, हमारे एक भाई कोई आए हुए हैं जो ताली शुरू कर देते हैं और सभी फिर बजा लेते हैं। भाई आप ज्यादा खुशी ना प्रकट करो, ये शांति से सुनने की चीजें हैं, तो थोड़ा ध्यान रखिए। तो मैं यही बात सुना रही थी कि जब आत्मा उस शांति के वतन में जाती है जो प्रकाश का वतन है, तो उस प्रकाश के वतन में चमकता हुआ एक दिव्य सितारा केवल मात्र उस ज्योति देश में उस ज्योति बिंदु प्यारे बाबा की जो शक्तियां हैं वो इस कदर चारों तरफ वातावरण के रूप में जैसे फैली हुई हैं, और मैं आत्मा उस अनमोल उस अचूक ऐसे वातावरण में अपने प्यारे बाबा का सानिध्य प्राप्त करने के लिए मैं बैठ गई हूँ, और उस प्यारे बाबा को देखती जा रही हूँ निहारती जा रही हूँ। ये है मेरे वो बाबा जिनकी मैं संतान हूँ, और जिस संतान ने बहुत समय अपने आप को देह समझकर विस्मित कर दिया था अपने घर और अपने पिता को, जैसे बहुत समय से भूला भटका बच्चा जो दुखी और परेशान था, आज उसको अपना सहारा, किनारा और ठिकाना मिल गया, ऐसे आत्मा उस समय अपने प्यारे पिता को प्राप्त कर अपने शांत देश में इतनी सुंदर शांति का अनुभव कर रही है, क्योंकि इस समय उसके सब लंगर टूट चुके हैं। बिल्कुल स्वतंत्र है आत्मा, कोई चीज उसको बांध नहीं सकती है। ऐसे आत्मा उड़ता पक्षी अपने प्रकाश के इस रॉकेट में विराजमान होकर अपने घर पहुंच गया। रॉकेट वापिस आया, लेकिन मैं आत्मा अपने घर विराजित, और विराजित घर में क्या देख रही हूँ, देख नहीं, लेकिन वो इस कदर आत्मा अपने वास्तविक स्वरूप की शक्तियों से भरपूर हो रही है कि चुंबकीय आकर्षण है उसका। क्योंकि आत्मा भी शांत है, धाम भी शांत है, बाबा भी शांति का सागर है, तो इस प्रकार आत्मा चुंबकीय आकर्षण में ऐसी आकर्षित होकर विराजित है, इतना सुंदर एक्सपीरियंस कर रही है। परंतु ऐसा भी नहीं कि वो कॉन्शियस उसको रही नहीं कि वो वापिस से नहीं आएगी, आएगी जरूर, लेकिन मैं ये अनुभव तो वतन में कर रही हूँ, परंतु शरीर तो मेरा यही है और ये मेरे अनुभव हैं जो इस शरीर में मुझे हो रहे हैं, लेकिन वो जो मेरे अनुभव वाइब्रेशंस दे रहे हैं, वो वाइब्रेशंस जो मेरे आसपास के प्राणी हैं, ना केवल उनको शक्ति, शांति या पवित्रता का आभास हो, लेकिन चारों तरफ ये वाइब्रेशन अनेक आत्माओं को शक्ति, शांति, पवित्रता, प्रेम, इन सब गुणों का अनुभव कराने की जैसे एक वातावरण रेस निकल रही है और चारों तरफ वो जा रही है। कई लोग ऐसा कहते हैं, हमको याद है जब शुरू शुरू में अपना 5 का ग्रुप विदेश सेवा पर गया तो समय अमेरिका का एक अनुभव सुना रहे थे कि जब एक स्थान पर मेडिटेशन पर लोगों को बिठाया और सारा समझा के उनको योग कैसे करना है, उस योग के अनुभव के लिए कहा कि 5-7 मिनट हम ऐसे बैठेंगे, और बिठाया गया तो कोई ने उस योग के पश्चात ये पूछा कि 5-7 मिनट के अंदर तो हमने कितनी डॉलर्स की कमाई कर लेनी थी, आपने 5-7 मिनट हमें ऐसे ही बिठा दिया। अब उन्हें ये मालूम नहीं कि मनुष्य धन उपार्जन किस लिए करता है, पैसा ढेला बनाने की कोशिश किस लिए करता है, मकान, कोठी, कार, संतान लायक बनाने की कोशिश किस लिए करता है, कि उसे जीवन में शांति, सुख और आनंद की उपलब्धि हो। और बिना स्थूल पदार्थों के बनाए आत्मा को उस परमात्मा के सानिध्य से, संबंध से वो अनुभूतियां प्राप्त होनी प्रारंभ हो जाए, जो आत्मा सुबह से रात तक प्रयत्न कर रही है, भाग दौड़ कर रही है, अगर उसे वो प्राप्तियां प्राप्त हो जाती हैं, तो प्राप्तियों की कमाई पद्मों की कमाई से ज्यादा है, उस कमाई को कथित नहीं कर सकते, मुख से बोल नहीं सकते कि इतनी कमाई हमने की। इसलिए बाबा कहता है, बच्चे योग में तो अनगिनत प्राप्तियां हैं, जिस चीज की प्राप्ति की गिनती नहीं हो सकती है। दुनिया में धन से आप कुछ लेंगे तो धन से आपको कंफर्ट के साधन तो मिल जाएंगे, कोठी मिल गई, कार मिल गई, दुनिया का पद मिल गया, यश मिल गया, ये सब हमको सुख देते हैं साधन, लेकिन टेम्पोररी टाइम के लिए, ये कोई सुख के साधन नहीं, ये आराम दे के साधन है। एक है सुख, एक है आराम। हमें आराम नहीं चाहिए, हमें सुख चाहिए। और वो सुख जो रियली सुख आत्मा मांगती है वो उसको परमात्मा पिता से प्राप्त हो सकता है, क्योंकि इसका सोर्स सिवाय बाबा के कोई और हो ही नहीं सकता है। ऐसे प्यारे बाबा हम बच्चों को अपनी पहचान देकर, अपने से संबंध जुटाकर इतना शक्तिशाली बनाना चाहते हैं, और हम बच्चे योग के समय इधर उधर घूम करके टाइम बिता देते हैं कई बार, और कई बार यही समझते हैं कि इतना अनुभव होता ही नहीं। अरे अनुभव क्यों नहीं होता, लंगर तो आपने खोला नहीं, चप्पू चलाते जा रहे हो कि बाबा तू ज्ञान का सागर है, मैं ज्ञान स्वरूप हूँ, तू शांति का सागर है। लेकिन जब तक अपने स्वरूप स्मृति की स्थिति में परिपक्वता नहीं आई, तब तक ईश्वर से संबंध जोड़कर प्रभु प्राप्तियों का अनुभव नहीं होता है। तो मैं ऐसा कहूंगी कि आप सब ने अपना समय निकाला है, समय एक अमूलक धन है जो चला जाए वापिस आता नहीं है। आप इस यज्ञ में जब आए हो तो जितना हो सकता है इस समय को सफल करते हुए प्यारे बाबा के संबंध से जो ईश्वर अनुभूति है, ऐसे अनुभव यहाँ से प्राप्त करके ही जाएंगे, तभी आपका जाना सफल होगा। मेरे आदरणीय दादी जी आ गए। ओम शांति।
तुम्हारा मधुबन वो मेरे बाबा, तेरा नजारा दिखा रहा है। तुम्हारा मधुबन वो मेरे बाबा, तेरा नजारा दिखा रहा है। जिसे भी देखो हमारा बाबा, कह गुण तुम्हारा वो गा रहा है। तुम्हारा मधुबन कभी तो कमरे में हमको दिखता, कभी तू कुटिया में खत है लिखता, कभी तो कमरे में हमको दिखता, कभी तू कुटिया में खत है लिखता। ये कैसा जादू जिधर भी देखो, नजर तू मधुबन में आ रहा है। तुम्हारा मधुबन वो मेरे बाबा, तेरा नजारा दिखा रहा है। तुम्हारा मधुबन है देह दुनिया को हम भी सारे, मधुर बोल सुन के प्यारे प्यारे है। देह दुनिया को हम भी सारे, मधुर बोल सुन के प्यारे प्यारे। यही है मधुबन, यही गोपिया, यही तू मुरली सुना रहा है। जिसे भी देखो हमारा बाबा, कह गुण तुम्हारा वो गा रहा है। तुम्हारा मधुबन ये चलते फिरते दिखे जो मूरत, रूहानी रंग में चमकते सूरत, ये चलते फिरते दिखे जो मूरत रूहानी रंग में चमकते सूरत गुलों में रोशन होकर के बाबा जहां का गुलशन सजा रहा है जिसे भी देखो हमारा बाबा कह गुण तुम्हारा वो गा रहा है तुम्हारा मधुबन ये आबू अब्बा का प्यारा घर है अपने ही घर से जग बेखबर है ये आबू अब्बा का प्यारा घर है अपने ही घर से जग बेखबर है कोई क्या जाने बच्चों से बाबा महामिलन वो मना रहा है जिसे भी देखो हमारा बाबा कह गुण तुम्हारा वो गा रहा है तुम्हारा मधुबन ओ मेरे बाबा तेरा नजारा दिखा रहा है जिसे भी देखो हमारा बाबा कह गुण तुम्हारा वो गा रहा है तुम्हारा मधुबन ओ मेरे बाबा तेरा नजारा दिखा रहा है।